कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम
राम हरे हरे
राम हरे हरे।
तो आज के इस 8 मार्च के संध्या जागृति कार्यक्रम में श्री वृंदावन हॉस्पिस में आप लोग का स्वागत है। आज हाफ शिवरात्रि का दिन है, कल भी शिवरात्रि थी और आज भी शिवरात्रि है। तो ये उचित होगा कि हम शंकर भगवान के बारे में कुछ चर्चा करें। शंकर भगवान की जो स्थिति है वो दो तरह की स्थिति है। एक वो स्थिति है जो उनकी ड्यूटी है और एक वो स्थिति है जो उनकी आत्मभावना है। और हमारे लिए उनकी आत्मभावना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बगैर उनकी ड्यूटी की। ड्यूटी के हिसाब से वो त्रिदेव में से एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी संभालते हैं, सब लालन पालन करते हैं और शिव जी नष्ट करते हैं जब समय आता है उसका। उतना ही काम नहीं उनके लिए, एक तो मेन काम है समय पर उनको प्रकृति को नष्ट करना, लेकिन और भी काम है उनके। वो कला के देवता हैं, नटराज भी माने जाते हैं उनको, संगीत नृत्य के देवता हैं और बहुत सारे तांत्रिक विद्याओं के भी वो दैवत हैं। ये उनकी कैसे कह सकते हैं आप, लौकिक लौकिक कर्तव्य है उनके जो उनको एक देवता के रूप में करने हैं। और उसमें भी उनकी पोजीशन जो है वो महादेव की है, उसमें भी वो एक असाधारण देवता है। बाकी सब देवता अलग अलग तत्वों में हैं, अलग 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 लोकों में रहते हैं, लेकिन शिव जी एक ऐसे अकेले तत्व हैं। तीन प्रकार के तत्व हैं, एक है जीव तत्व, एक है शिव तत्व, एक है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व के अंतर्गत अनंत लाखों करोड़ों विष्णु हैं जो अलग अलग वैकुंठों के दर्श अधिपत्य करते हैं। एक वैकुंठ नहीं है, ब्रह्म ज्योति के अंदर अनगिनत वैकुंठ हैं। हर एक वैकुंठ में एक विष्णु स्वामी है, मतलब अनगिनत विष्णु है। तो विष्णु तत्व में अनगिनत व्यक्ति है और जीव तत्व में हम सब लोग आते हैं, न केवल मनुष्य आते हैं, प्राणी पंछी पेड़ मछली कीटक सर्प हर प्रकार की योनि, 84 लक्ष योनि के जितने भी जीव हैं वो जीव तत्व में आते हैं। जो हम सब लोग हैं हम भी जीव तत्व में आते हैं, तटस्था शक्ति में आते हैं भगवान की। लेकिन शिव तत्व में केवल एक व्यक्ति आता है, वो है शिव जी भगवान, शंकर भगवान। और लौकिक दृष्टि से वो उनका जन्म जो है वो जब ब्रह्मा जी को कुछ चीजों में उनके योजना के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी के क्रोध की अवस्था में उनके भ्रुकुटी मध्य से, मतलब इस जगह से, भ्रुकुटी यानी कि भवे, उनके बीच की जगह से शिव जी का जन्म हुआ। उसको रुद्र कहते हैं और एक रुद्र नहीं, 11 रुद्र एक के बाद एक निकले और 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। ये उनका लौकिक रूप में जन्म का इतिहास है। इसका मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वो, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जन्म से तो उनके पिताजी हैं लेकिन कर्तृत्व से वो महादेव हैं। ब्रह्मा के लिए भी पूजनीय है। कई प्रकार कई भागवत में के प्रसंग आते हैं जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी का स्तुति कर रहे हैं, शिव जी की याचना कर रहे हैं, ऐसे शिव जी का कुछ और विनती कर रहे हैं। ऐसे शिव जी का लौकिक पोजीशन है कर्तव्य के अनुसार। लेकिन जैसे समझो मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा एक पोजीशन है, मेरा एक ड्यूटी है और मैं निभा रहा हूँ उसको, लेकिन इस ड्यूटी के बाहर मैं बहुत कुछ हूँ। मैं पिता हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक ससुर भी हूँ, मैं बहुत सारा ड्यूटी है मेरा और बहुत सारी मेरी कलाएँ हैं, मेरी इच्छाएँ हैं, मेरा काम करता हूँ मैं जो ड्यूटी के बाहर है एक व्यक्ति के रूप में। तो अधिक महत्वपूर्ण वो होता है जो ड्यूटी के बाहर होता है, एक इंसान के रूप में क्या हूँ और एक कुर्सी में बैठा हूँ उसका कर्तव्य अलग अलग। कभी कभी दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो शिव जी का जो आत्मभावना है, जो उनका चरित्र है, जो उनका क्या कहते हैं उसको कैरेक्टर है उनका, वो उनकी ड्यूटी से बहुत महान है क्योंकि उनका चरित्र जो है वो भगवान के सेवक का है। उनकी व्याख्या की गई भागवत में, वैष्णवानां यथा शंभु, वो सब वैष्णवों में एक श्रेष्ठ वैष्णव है, सब वैष्णवों में आदरणीय वैष्णव है। इसके इसमें इनका ड्यूटी का कोई कनेक्शन नहीं है, ड्यूटी एक जगह पर है, हृदय से वो क्या है एक श्रेष्ठ वैष्णव, और हम लोग उनको इसी रूप में देखते हैं। हमको उनके विध्वंसक होने से कोई मतलब नहीं, हमको उनसे महादेव होने से कोई मतलब नहीं, उनके जो लौकिक कर्तव्य है उनसे हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक बार हम जब भगवान के भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो केवल वही चीजें बचती हैं जो भगवान के संबंध में है। बाकी कितने भी चकिया चौंध करने वाली वस्तुएं हों वो भक्त के लिए कोई मतलब नहीं रखती। इसका भगवान का संबंध नहीं, उसका क्या मतलब है, कोई इंटरेस्ट नहीं। गोपियों को वैसा ही था, नंद महाराज यशोदा मैया ऐसे थे जिनमें भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है, वो उनको सुनना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है उसके बारे में, वो केवल भगवान के विषय में जो संबंधित चीजें हैं उनके बारे में बात करो बस, और कोई कनेक्शन नहीं। जब कोई आता था द्वारका से तो केवल कृष्ण और बलराम की खबर पूछते थे वो, बाकी द्वारका में क्या हो रहा है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे फोकस्ड लोग है वो। वैसे हमको होना चाहिए। शंकर भगवान लौकिक में कर्तव्य करते हैं लेकिन भक्तों के साथ में उनका संबंध दूसरा है, वो स्वयं भक्तों का वैष्णव का इतना आदर करते हैं, स्वयं की सेवा करते हैं उनकी। इसलिए हम शिव जी को एक देवता के रूप में देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय में देवताओं की पूजा नहीं करते, एक ही व्यक्ति की पूजा करते, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक कृष्ण की पूजा करते हैं बस, बाकी सबको सबका आदर करते हैं कि एक शिव जी का भी आदर करते हैं, देवता का भी करेंगे क्यों नहीं करेंगे, लेकिन पूजन नहीं करते किसी को, ना जरूरत है पूजन करने की। जिसने भगवान कृष्ण का आश्रय ले लिया है उसके शरीर में शंकर सहित सारे देवता लोग निवास करना चाहते हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ एनीथिंग एल्स, और क्या विचार करें इसके बारे में। शंकर भगवान सहित सारे देवताएं उस व्यक्ति के शरीर में रहना चाहते हैं जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त बनना कोई साधारण चीज नहीं है, हाँ भगवान का नाम जप कर पाना कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं इसलिए वो महान चीज है। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म ले चुका है उसको भगवान का नाम का परिचय होना ये बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़े भाग्य की बात है। चाहे वो जन्म से या कर्म से कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने श्लोक पढ़ा ना, अहो बतश्च गरियान, कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, कुरूप हो, लेकिन अगर भगवान का नाम लेता है तो वो सर्वोच्च स्थिति में पहुंच सकता है। ये भागवत का वचन है, जो प्रमाण है सब दुनिया में भागवत का वचन। तो ऐसे व्यक्ति को शंकर भगवान भी आदरणीय मानते हैं और हम भी उन्हें देवता के रूप में नहीं पूछते हैं, एक वैष्णव के रूप में पूछते हैं। जैसे सब वैष्णव की पूजा करते, भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्ता पूजा वैदिका, मुझसे अधिक मुझे मेरे भक्त की पूजा अधिक पसंद है। तो मेरी पूजा करता है वो तो मुझे खुश करता है, लेकिन जो मेरे भक्त की पूजा करता है वो उससे भी अधिक मुझे पसंद देता है। अच्छा, कुछ भूख लगाया नहीं? ठीक है। तो स्वयं शंकर भगवान इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और सारे वैष्णव भी इस बात को समझते हैं। जब आप भक्ति का चश्मा लगाते हैं तो उस चश्मे से सबको देखते हैं, तो शंकर जी को वैसे देखते हैं। और ये शंकर जी का एक अपना ड्यूटी है, लेकिन एक भगवान के साथ उनकी लीला है, एक इनका वृंदावन का लीला है। वो इतना गहरा है कि वो समझ सकते हैं कि आप एक ड्यूटी के परे जाकर एक व्यक्ति कितना भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यूटी अपनी कर रहा है, टाइम पे डिस्ट्रॉय करना है उसको, टाइम पे कुछ करना है, कुछ कला का कुछ आशीर्वाद देना है, लोग आए कुछ अभिषेक किया तो उनको भी कुछ देना है ना, लोग मांग लेकर आते हैं उनके पास, ये चाहिए वो चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, जॉब चाहिए, तो वो भी तथास्तु करना है जब समय आएगा तभी, वो उनका ड्यूटी है। लेकिन हृदय से एक भक्त है वो भगवान की, चिरंतन रूप भगवान की भक्ति करते, और बोलते ना कि आपके लिए कुछ भी, वैसा उनके लिए मन में भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। ऐसे महान शिव जी, और मैं देखता हूँ, मैं कल देख रहा था ब्रज में कितने ब्रजवासी ने कल जागरण किया, रात भर कोई बनकंडी महादेव बैठा है, कोई ये महादेव पे है, कोई गोपेश्वर महादेव पे है, कोई इस महादेव पे है, ब्रजेश्वर महादेव, कोई भूतेश्वर महादेव, कोई चक्रेश्वर महादेव, सब जगह महादेव जी के पास बैठकर रात भर व्रत किया, भजन किया उन्होंने, क्योंकि वो लोग भी भोले बाबा को एक देवता नहीं मानते हैं, एक वैष्णव मानते हैं, इसलिए उनके लिए उपवास करते हैं, इसलिए उनका भजन करते हैं, पूजन करते हैं। ये नहीं कि भाई अरे शिवजी बहुत बड़ा देवता है, इनसे आशीर्वाद लेंगे तो कोई अच्छी पत्नी मिलेगी, धन बढ़ेगा, हाँ कला में कुछ प्रगति होगी, हमारी भौतिक प्रगति होगी, इसलिए नहीं। खास करके मैंने देखा है मेरे कई ब्रजवासी मित्र हैं, उनका बहुत गोपेश्वर पे और बनखंडी महादेव पे बहुत प्रेम है। कुछ लोग ऐसे जो रोज जाते हैं गोपेश्वर महादेव, रोज कुछ भी हो जाए, सोमवार को नहीं, हर रोज जाते हैं दर्शन करने, जल चढ़ा के आते हैं, दूध चढ़ा के आते हैं। एनीवेज, उनकी एक छोटी सी कहानी है कैसे भोले बाबा हैं। रावण ने इनका कैलाश उठाया था, एक बार नहीं 100 बार उठाया था, तो उन्होंने 100 बार उठाने के बाद केवल अंगूठे से रावण को दबा दिया था, पैर के अंगूठे से। कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। तब जब असह्य हो गया तो उन्होंने फिर वो छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसे शिव जी हैं, महान शक्ति थी, शक्तिशाली। तो अधिकतर इनके जितने महान भक्त हुए हैं, जैसे कंस हुआ है, रावण हुआ है, ये सब शिव जी के भक्त हैं। एक तरह से उनको भक्त नहीं कह सकते, वो केवल अपना बिजनेस करने के लिए शिव जी को पूछते हैं, उनको वरदान चाहिए, उनको कुछ शक्ति चाहिए, उनको कुछ कुछ सिद्धि चाहिए, अधिकार चाहिए, कुछ अमरता चाहिए, कुछ इससे अभय चाहिए, उससे अभय चाहिए, ये शस्त्र चाहिए, ये अस्त्र चाहिए, तो फिर उनको पूछते रहते। बाकी शंकर पर प्रेम नहीं करते हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता पर कभी प्रेम नहीं करता है, जो मानता है कि हम गणेश जी के भक्त हैं, हम देवी जी के भक्त हैं, हम शंकर जी के भक्त हैं, हम इसके भक्त हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी पर प्रेम नहीं करता, वो केवल खुद पर प्रेम करता है, और जो खुद का एप्लीकेशन दिया हुआ उस पर प्रेम करते हैं, जो उनके पास दिया हुआ, बस मेरी जो इच्छा है जब तक आप पूरी कर रहे हो तो आपको आ रहे हैं, अगर मेरी इच्छा है पूरी हो रही, चलो गणपति को चेंज करो, अभी देवी के पास चलो, वहां पर एप्लीकेशन दे दो, वहां पर नहीं हुआ तो शंकर जी के पास जाओ, उधर नहीं हुआ तो फलाना के पास जाओ, यही है व्यवहार है, कुछ प्रेम में कुछ नहीं। लेकिन एक वैष्णव अपने इष्ट पर प्रेम करता है और उसी पर प्रेम करता है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ एप्लीकेशन दिया और शादी नहीं हुई, चलो चेंज करो अभी, कृष्ण को छोड़ो और गणेश जी के पास जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसकी श्रद्धा जो है अटूट होती है, चाहे इच्छाएं पूरी हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, जो चाहे स्थिति में रखो, वो कहते हैं अश्लीषवा पादरताम पिनष्ट माम, आप गले लगाओ ठुकरा दो, हम आपके सेवक बने रहेंगे, ये वैष्णव की भावना होती है। और इसी भावना से वैष्णव शिव जी को देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सारे जो असुर है ना, उन्होंने सब लोगों ने शंकर जी का पूजन किया, भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया, इतना भयंकर तपस्या किया कि अपने शरीर के मांस को काट कर स्वाहा कर रहे अग्नि में, तो शिव जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो, वो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो भस्म हो जाए और वो भस्म मैं आपको अर्पण कर दूं, बढ़िया चीज है तथास्तु। लेकिन गड़बड़ ये है कि वो जब वरदान मांग रहे थे, वरदान देने को शिव जी आए थे, तो पार्वती देवी को लेकर अपनी पत्नी को लेकर आए थे, तो उसकी नजर पत्नी पर पड़ती है, अरे पत्नी बहुत सुंदर है, तो जब वरदान मिला तो ये सोचा कि सबसे पहले शिवजी पर के हाथ लगाते हैं, इनको ही भस्म बना देंगे तो पत्नी उनकी मेरी हो जाएगी, तो शिवजी को हाथ लगाने के पीछे भागे तो शिवजी भागने लगे, बेचारे क्या करें, वरदान तो दे दिया उन्होंने, तो भाग रहे शिवजी रास्ता आ रही है, भाग रहे उसके पीछे हाथ लगाने के लिए, उसको पार्वती के ऊपर वासना हुई। तो बीच में फिर ब्राह्मण बनकर जो है वो विष्णु आ गए और बोला क्या बात है, बोले इनको मैंने वरदान दिया मेरे पीछे भाग रहे हैं, मुझे स्पर्श कर रही है। तो ब्राह्मण बालक बोलते हैं कोई बात नहीं मैं देख लूंगा उसको, तो उसको रोकते हैं, अरे भस्मासुर कहाँ भाग रहे तू, बोले वो उनको हाथ लगा रहे, मुझे उनकी पत्नी मुझे चाहिए, बोला पागल हो गया तुम, तो भोलेनाथ है वो, पता नहीं वो क्या इनका संग किसका है, भूत प्रेत का संग है, स्मशान में निवास है, भस्म का लेप है शरीर पर, क्या उनका कैरेक्टर है कुछ, और उनके वरदान में विश्वास रखते हो, अरे देखो अपने हाथ को सर पर लगा देगा कुछ नहीं होगा, तो अपने हाथ को सर को हाथ लगा दे और भस्म के खत्म हो जाए। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ है, भगवान ने भी कहा कई बार कहा अरे ऐसे वरदान मत दिया करना, ब्रह्मा जी को डांटा है कई बार, भोले आप कैसे है ना, बहुत भोले हमें, राधा रानी कैसी है, ऐसे ही हो। तो एक बार क्या हुआ, वो भगवान का ना युद्ध हुआ, कृष्ण का काशीराज से युद्ध हुआ, काशी जो है ना ऐसा है ना कि भगवान शंकर जी का विवाह पार्वती से हुआ था, उसके पहले जन्म में पार्वती सती थी, सती यानी दक्ष राजा की पत्नी थी, दक्ष राजा ने ये जमाई को पसंद नहीं किया, अरे मेरी 11 कन्याएं हैं, 10 कन्याओं को तो अच्छा अच्छा पति दिया मैंने ऋषि मुनि वाला, और ये फकीर कहाँ से आ गया, ये तो लव मैरिज है, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं, मेरे बराबरी का आदमी नहीं है ये। तो ऐसा शिवजी को ना पहचानते हुए बहुत निंदा किया उसका, तो सती को बहुत दुख हो गया, उसने अपने आप को जला दिया, भस्म कर दिया, बोला ये शरीर तुमसे प्राप्त हुआ है, तुम इतने पापी हो, वैष्णव अपराधी हो, तुमसे प्राप्त किया शरीर मुझे अभी रखने की इच्छा नहीं मुझे, तो मंत्र बोलकर जलाकर भस्म कर देते, अग्नि तत्व को प्रज्वलित करके उधर के सबके आंखों के सामने खत्म हो जाती है। और फिर वो अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में आती है पार्वती, लेकिन जब सती के रूप में थी तब ये फकीर जमाई को देखकर जो ससुर जी निंदा करते थे, इसलिए शिवजी ने काशी शहर बनाया, मतलब उनको कोई आसक्ति नहीं है काशीवासी में, लेकिन लौकिक दृष्टि से अभी ससुर जी इतनी निंदा कर रहे कि इस पर कुछ है ही नहीं, पेड़ के नीचे रहता है, हाँ ये मेरा जवाई कैसे हो सकता है, मतलब ये क्या कुछ लायक है उसके कुछ। तो उन्होंने काशी बनाया, और ऐसा काशी बनाया कि किसी भी देवता लोक को भी तुलना नहीं कर सकते उसकी, इतना सुंदर काशी बनाया, इतना चकाचौंध उसकी महल उसके और उस पूरे शहर को ऐसा बनाया, और खुद निवास करने लगे। तो उसमें फिर यथावकाश कई राजा हुए और वो शिव जी के भक्त हैं, सब लोग शिव जी का आश्रय लिए हुए, लेकिन शिव जी के सब लोग उपासना करने में सब लोग भक्त नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे राक्षस होते हैं, क्योंकि वो शिव जी को प्रेम नहीं करते हैं। कामैः स्तैस्तैर् ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो काम वासना से व्याकुल होते हैं वो देवताओं के पास अपना अर्जी लेके जाते हैं, वो किसी पर प्रेम नहीं करते, खाली अपने काम पर प्रेम करते, ऐसे थे वो। तो काशीराज का भगवान का युद्ध हुआ, बहुत लंबी कहानी है वो, क्यों हुआ तो बात नहीं। तो जब वो युद्ध हुआ काशीराज का, तो भगवान ने काशीराज के मतलब काशीराज भगवान ऐसा ऐलान करके आया था, मैं कृष्ण का सर लेकर लौटूंगा और आप लोगों को प्रेजेंट दूंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको ऐसा बाण मारा कि वो बाण में ऐसा गति दिया कि वो बाण सीधा काशी में जाके गिरा सर को लेकर काशीराज के। हे सब काशीराज, काशी के सब लोग भाग के आए, अरे मेरे राजा ने जो ऐलान किया था वो पूरा किया, उसने कृष्ण का सर भेज दिया है। जो पास में जाके देखा तो ये अपने राजा का ही सर है। बड़े दुखी हो गए वो। तो वो काशीराज इतना गर्विष्ठ था, उसने अपने पुत्र को बोला था कि तू मत आना, कोई जरूरत नहीं, आराम कर दो, मैं जाके इसका सर काट के ले गया था। तो सुदक्षिण नाम का पुत्र था उसका काशीराज का, वो नहीं गया था। और जब सनसनीखेज खबर पहुंचती है कि अरे अपने राजा का सर आ गया है, इधर फेंक दिया गया हवा से, तो वो भी आ गया देखने लिए, देखा तो अरे हाँ मेरे पिताजी का सर भेजा है, तो बड़ा गुस्सा आया उसको, वो शिवजी की पूजा में बैठ गया, बड़ी तपस्या किया कड़क उसने, और शिवजी को प्रसन्न किया, बोला मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे शत्रु का मैं वध कर सकता हूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। तो वो शत्रु का वध करने का आप मुझे मंत्र दे दो, वैसा जादू करो मेरे ऊपर कि मैं शत्रु का वध कर सकूं। तो शिवजी महाराज ने इनकी मति को देखा कि इनकी मति तो बहुत भ्रष्ट है बेचारी, तो उसको तंत्र विद्या सिखाया, उसने तंत्र विद्या का मंत्र दिया, बोला ये तंत्र विद्या का अभ्यास करो, जब सिद्ध हो जाओगे तो वो तंत्र विद्या करके आप एक राक्षस पैदा कर सकते हो बहुत भयंकर, और वो जाकर तुम्हारे शत्रु का वध करेगा। तो फिर ये तंत्र विद्या में बैठ गया, यज्ञ वज्ञ किया, रिम क्लेम स्वाहा होता है ना, देखा ना आपने, इंद्रजीत ने भी किया था वैसा बहुत भयंकर। तो सिद्ध किया उसने अपने तंत्र विद्या को, एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण को मारना। तो सिद्ध हो गए, तो फिर उन्हें वो जो मंत्र दिया था वो उच्चारण किया, तो एक भयंकर राक्षस पैदा हो गया, इतना भयंकर, लाल रंग के बाल, लाल रंग की आंखें, बड़े तलवार की तरह जीभ उसकी, हाँ ऐसा भयंकर चेहरा उसका, और हाथ में त्रिशूल, नंगा ऐसा भयंकर। बोला क्या आ गया है, बोला जाओ द्वारका नगरी को ध्वस्त करके वो कृष्ण का सर काट के ले गया। तो गए वो राक्षस, क्योंकि वो तंत्र विद्या के मंत्र का गुलाम होता है, जो तंत्र विद्या में जो भी उसने कहा है उसका वो गुलाम होता है, वो तंत्र उसके ही आदेश को पालन करता है। तो गया द्वारका में, सबको जलाने लगा, द्वारका नगरी दहा दहा होने लगी, तो सब द्वारकावासी भाग के आए कृष्ण के पास। तो कृष्ण अभी क्या कर रहे थे, रुक्मिणी के साथ चेस खेल रहे थे, यानी कि चौसर का खेल खेल रहे थे। तो आराम से उन्होंने देखा, अरे नगरवासी हो चिंता मत करो, अभी करता हूं उसका इंतजाम। फिर हृदय से उन्होंने चक्र को आह्वान किया, सुदर्शन चक्र को, तो वो व्यक्ति रूप है ना, व्यक्ति रूप में हाथ जोड़ के महाराज क्या आ गया है, बोले वो आया है राक्षस, उसका इलाज कर देना। तो चक्र ने क्या किया, जाकर वो खड़े हो गए उसके सामने और निहारिका अस्त्र छोड़ दिया उसके ऊपर। मतलब क्या है, वो अग्नि अस्त्र पैदा करके जला रहा है द्वारका को, कोशिश कर रहा है जलाने की। तो इन्होंने क्या किया ना, ठंडक का अस्त्र भेजा, तो एकदम शिथिल हो गया वो, मतलब यू नो उसका मतलब डिस्चार्ज हो गया वो कुछ नहीं कर पाया। तो जब भी अपन कुछ काम करने के लिए आते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो जहां वापस भागने लगा, मतलब उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। तो चक्र उसका पीछा करने लगे। अभी कैसा है ना, ये तंत्र विद्या का एक समझ लो बात, आप समझ लो, समझो आपने तंत्र विद्या किया मेरे ऊपर, क्या समझो कुछ गलत काम, और समझो मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो वो ही असर जो मंत्र जिसने उच्चारण किया उसके ऊपर जाके वो असर करता है उसका, उसको बोलते हैं बुमरैंग। बुमरैंग मतलब क्या है, आपने जिस चीज को मारना चाहा वो नहीं मर सका, तो आगे तुमको ही मार देगा वो, वैसा खाली जाएगा नहीं वो। तो सुदक्षिण पहुंच गया काशी में, तो काशी में इन्होंने सुदक्षिण के नेतृत्व में सारे ब्राह्मणों को बोलकर तंत्र विद्या का अभ्यास किया था, और ब्राह्मणों के नेतृत्व में तंत्र विद्या को सिद्ध करके इस राक्षस को निर्माण किया था। तो जिम्मेदार सुदक्षिण था, नेता उसका मतलब जिम्मेदार व्यक्ति। तो उसने जाके क्या किया, उस राक्षस ने जाकर सुदक्षिण को मार डाला और सब ब्राह्मणों को मार डाला जिन्होंने ये सब तंत्र विद्या के यज्ञ में साथ दिया था। और फिर चक्र गया और चक्र ने उस राक्षस को मार डाला। और फिर चक्र ने क्या किया, सुदक्षिण ने एक और वर मांगा था शिव जी से कि जब भी मैं कृष्ण से युद्ध करने जाऊंगा, तो शिव जी ने कहा था कि मैं आपके संग आऊंगा। तो फिर जब ये गड़बड़ हो गया तो शिव जी ने अपने वादे के अनुसार क्या किया, भगवान से युद्ध शुरू किया। और इसमें यहां पर जब वादा किया था ना आपने शिष्य अपने भक्त को, तो शिव जी ने अपने गण वर्ण लेके भूत प्रेत लेकर पिशाच लेकर उन्होंने भगवान पर हमला किया। तो भगवान को उनका घमासान युद्ध हुआ, उसका भागवत में वर्णन दिया है अगले अध्याय में, दसवें स्कंद के अगले अध्याय में। तो फिर जब ये युद्ध वहां पर हो रहा है, शिव जी का जो काशी है वो सुदक्षिण को मारने के बाद में शिव जी अगर पूरा वो चक्र जो है वो काशी को ध्वंस कर देता है, पूरा जलाकर राख कर देता है, मतलब शिव जी का निवास जो है समाप्त कर देता है। तो शिव जी यहाँ पर एकदम निवासहीन हो जाते हैं ना, घर बेघर हो जाते हैं बिल्कुल। और भगवान भी यहाँ पर बहुत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करके उनको परास्त कर देते हैं। तो शिव जी एकदम घुटने में आकर भगवान को शरण जाते हैं। तो भगवान बोले क्यों ऐसा किया तुमने, बोले मेरे ऐसे भक्त लोग ऐसे कुछ मांगते रहते हैं मुझसे, क्या करूँ लोग देखो कैसे है, क्वालिटी देखो इनकी कैसी है, और मैं इन्हीं के संग में मेरे भी मति भ्रष्ट, मतलब नम्र है शिव जी, वो तो भगवान की साथ लीला कर रहे हैं। उनको कोई मति का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो केवल नम्रता का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के संघ की वजह से मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मुझे आपकी आपके संघ की जरूरत है, मैं परेशान हो गया इनकी संघ की वजह से, इससे लोग मेरे वहां पर घूमते रहते हैं, अभी मैं आपका संघ चाहता हूँ। तो भगवान जो है शिव जी का भाव देख बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि मेरा एक धाम है शंख के आकार का है, वो है जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र नीलाचल धाम, वहां पर मैं उसका वर्णन कर रहा, बहुत लंबा वर्णन किया उन्होंने, कैसा का धाम है वो, समुद्र किनारे है, उसमें एक पहाड़ पर मेरा निवास है नील माधव के रूप में, और मैं वहां पर निवास करता हूँ, वहां के निवासी जीवन मुक्त है, चतुर्भुज है, मेरा धाम जो है काल के प्रलय में नष्ट नहीं होता है, सदैव वही रहता है, जैसे प्रलय काल में नष्ट नहीं होता है, बहुत वर्णन करते हैं। और उसके पास में एक एकाम्र वन है और उस वन में मैं आपको आश्रय देता हूं, तो मेरे बिल्कुल पास में है, मेरा नित्य संग आपको प्राप्त होगा, और वो एकाम्र वन का नाम क्या है आज, भुवनेश्वर। इस तरह से भगवान ने शंकर जी को बड़े प्रेम से इस लीला के माध्यम से अपने पास में आके ठहराया, और ये भी कहा कि जो मुझे भोग लगेगा जगन्नाथपुरी में वो महाप्रसाद आपको अर्पण किया जाएगा, और ये भी कहा कि आप वहां तो लिंग के रूप में रहोगे लेकिन मैं शालिग्राम के रूप में वहां पर निवास करूंगा, इसलिए आज भी भुवनेश्वर जाओगे आप, शिवलिंग तो है उधर लेकिन शिवलिंग के जो होता ना गड्ढा उसमें बड़ा शालिग्राम शिला है, वो जो भी पूजाएं होती है वो सब गोपाल मंत्र से होती है, मैं भोग लगाना है आपको अभिषेक करना है जो भी करना है वो सब गोपाल मंत्र से होती है, मतलब वास्तविक रूप में शंकर जी को भगवान ने एकदम निकट संग दिया है शालिग्राम के रूप में। अभी भी मैं जाके आया दिसंबर में यात्रा लेके गया था, तभी दर्शन भी करके आया, इतना बड़ा सफेद रंग का शिला है, जो शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे ऐसे ऊपर आया हुआ शिवलिंग होता है और एक गड्ढे के रूप में होता है, तो त्र्यंबकेश्वर जो है गड्ढे के रूप में, वैसे भुवनेश्वर भी गड्ढे के रूप में गड्ढा है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, कई जगह पर जो है ऊपर वाला हिस्सा है, सोमेश्वर में ऊपर वाला हिस्सा, सोमनाथ में, हाँ 12 ज्योतिर्लिंग है जो शंकराचार्य ने स्थापन किए थे। तो इस तरह से भगवान ने शिव जी को बड़े प्रेम से अपने पास एकाम्र वन यानी भुवनेश्वर में आश्रय दिया, रवि भी वहां शिव जी रहते हैं। तो एक दिन शिव जी एक राजा के स्वप्न में आए, बोले चलो भुवनेश्वर, मैं जमीन के अंदर गड़ा हूं, मुझे बाहर निकलना है। तो राजा जो बड़ा भक्त था शिवजी का, वो सेना लेकर आया उधर, तो कहीं समझ में नहीं आया उसको किधर है, तो वहीं सो गया वन में एकाम्र वन में। तो उसको रात को फिर दोबारा सपना आया और शिवजी ने कहा कि कल सवेरे एक गाय आएगी और बहुत गाय आएंगी यहाँ पर, लेकिन उसमें से एक गाय जो है एक जगह जाकर पूरा अपना दूध छोड़ देगी, उसी की जमीन की उधर नीचे मैं हूँ, मुझे निकालो। तो उठ जाते हैं, दिन भर देखते हैं बहुत सारी गाय आती है इधर घूमती रहती है, सबको देखते रहते हैं, एक गाय जाकर एक जगह पर दूध छोड़ देती, थान खाली कर देती। तो वहीं पर वो सब सैनिकों को लेकर प्रेम से खोदते हैं और उसको शालिग्राम जिसके ऊपर बसा हुआ है ऐसा एक शिवलिंग प्राप्त होता है, फिर उसको स्थापन करते हैं, वो है आज का भुवनेश्वर जो आपको दर्शन मिलता है उसका। इस तरह से वो जंगल के अंदर शिव जी को दोबारा प्रकट किया गया। उस मंदिर में कार्तिकेय जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, पार्वती देवी की मूर्ति है, 30 मंदिर है उसके अंदर, इतना भव्य विशाल बनाया गया राजा ने बनाया उसको, और 50 शिवलिंग है भुवनेश्वर में, पापनाशन महादेव ऐसे अनेक अलग नामों के अनंत वहां पर शिवलिंग है। वहां पर बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर का ऐसा कथा है कि पार्वती देवी ने कई राक्षसों का वध किया है, तो एक राक्षस का वध किया तो उसको बहुत प्यास लगी, तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे जल पिलाओ। तो शिव जी ने त्रिशूल लेकर एक पहाड़ पर हमला किया, ऐसा आघात किया, वहां से जल उत्पन्न किया और वो पार्वती को लाके दिया। पार्वती ने कहा नहीं नहीं ऐसा जल नहीं पीऊंगी, मैं पीऊंगी वो जल जो प्रतिष्ठापित किया गया है, जिसको मतलब यज्ञ करके स्थापन किया उस कुंड का, वो मैं पीऊंगी। तो फिर शिवजी ने सारे देवताओं को, गणों को और ऋषि मुनियों को, सप्तर्षियों को भेज दिया, बोला अपने अपने जगह पर जाकर सब तीर्थों का जल लेके आना। तो सारे तीर्थों का, करोड़ों लोगों का जल इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने एक एक बूंद उसका उस कुंड में दिया जिसमें शिवजी ने त्रिशूल मारकर और एक छेद किया था पृथ्वी में, सेकेंड जगह पर ना, वो पहाड़ वाला नहीं, नए जगह पर त्रिभुवन भुवनेश्वर के पास में उन्होंने पृथ्वी पर छेद किया, जगह बनाया, तो उसमें सब देवताओं ने एक एक बूंद दिया अपना, तो वो क्या बना, बिंदु सरोवर। और फिर बिंदु सरोवर को शिव जी ने यज्ञ करके प्रतिष्ठापित किया, प्राण प्रतिष्ठा किया उसका, और फिर वो जल अपने पत्नी को दिया, फिर उन्होंने पिया उसका। उसी बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम मुनि ने तपस्या किया, तो विष्णु ने दर्शन दिया उनको प्रेम से, उनकी भक्ति को देखकर। तो उस समय विष्णु के आंखों में आंसू आए कर्दम मुनि की भक्ति देखकर, गदगद हो गए विष्णु, तो उनके आंसू भी उस पे पड़े, गिरे हुए बिंदु सरोवर में। ऐसा ही भुवनेश्वर है, बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य। तो वहां पर शिव जी जो है उसको देवता के रूप में नहीं पूछते, भगवान के भक्त के रूप में पूछते, एक वैष्णव के रूप में पूछते हैं। इसलिए वैष्णव लोग भी भुवनेश्वर का महाप्रसाद खाते हैं, लोग जानते हैं, तो शालिग्राम जी भी बैठे हुए हैं, उनके पहले भोग लगता है, फिर शिव जी को लगता है, फिर वो भक्तों को बांटा जाता है। ऐसा महात्मा है शिव जी का। तो हमें भी कभी भी शिव जी को हमारे इच्छाओं को पूर्त करने वाले देवता इस रूप में देखना नहीं चाहिए, इसमें हमारा नुकसान है। जब भी हम कुछ मांगते हैं तो उस क्रिया में हम लोग केंद्र स्थान में रहते हैं कि मुझे चाहिए, आप मुझे दो, आपके पास, आप कोई भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे दो, अगर आपके पास है तो दे मुझे। तो उसमें वो किधर पिक्चर में होते नहीं, खाली मैं और मेरी इच्छा होती, खुद पर प्रेम होता है खाली, बस बाकी कुछ नहीं होता है। देवताओं में कुछ गड़बड़ नहीं है, देवताओं में से कई देवता आपको भगवान की भक्ति दे सकते हैं, जैसे गणेश जी है, जैसे देवी है, जैसे शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, ये आपको भक्ति दे सकते हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन मांगता कौन है उनके पास। तो मांगते यार बड़ी लिस्ट है उनकी, क्या क्या मांगने की तृप्ति होती नहीं, एक लिस्ट ऊपर से टिक मार्क करते आते, नीचे नई नई लिस्ट तैयार होती है, हाँ ऊपर से तथास्तु तथास्तु करते करते गए तो इधर लिस्ट भी नई 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 ऐड हो जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती। हर मंगलवार को नई लिस्ट है गणपति के सामने, हर सोमवार को नई लिस्ट है, बोले कितनी पूरी करे, क्योंकि भोग जो है ना वो कभी खत्म होता है क्या, वो तो नए नए जैसे रावण के सर है ना, वैसे एक काटा तो दूसरा तैयार हो जाता है, खत्म ही नहीं होता है वो कभी। तो वो रूप से उनको देखना नहीं चाहिए, एक वैष्णव के रूप में देखना चाहिए, और वैष्णव के रूप में देखकर उनसे आप कृष्ण की भक्ति मांगेंगे तो आपको देंगे, वो निश्चित रूप से देंगे। ये देवताओं के अंदर गलती नहीं, कुछ मांगने वाले के अंदर गलती है। जब मांगने वाले की मति सही होती है तो वो मांगना भी सीखता है कि क्या मांगना चाहिए, ये मांगना भी एक कला है, क्या मांगना चाहिए और किससे मांगना चाहिए पता होना चाहिए। सबके पास जाके ये तो वो तो, ये भोग वाली वस्तु तो जो कभी टिकने वाली नहीं है, आज देंगे तो खत्म हो जाएगी, कल फिर नया भोग की वासना उत्पन्न होगी, फिर नई एप्लीकेशन दोगे आप, फिर नया तरह से पूरा करोगे तो और वासना उत्पन्न होगी, फिर और एप्लीकेशन दोगे, इसमें कोई मति मतलब बुद्धि की बात नहीं उसके अंदर। कुछ मांगो तो ऐसा मांगो, एक ही बार मांगो तो जीवन भर पर्याप्त हो जाए, बार बार मांगना नहीं पड़े। और ऐसे व्यक्ति से मांगो जो ऐसी वस्तु दे सकता है, क्योंकि सारे देवता लोग आपको भक्ति दे सकते हैं, लेकिन सारे देवता लोग आपको अगर बोलेंगे मुझे मोक्ष दो तो नहीं दे सकते वो। अब देखो रावण ने पहले क्या मांगा, बोले मुझे अमर कर दो। हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से, बोले अमर कर दो। सब देवताओं को पास जाके पहले बोलते मुझे अमर कर दो, और देवता ने क्या जवाब दिया है, सबका कॉमन जवाब है, उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि मैं खुद मरने वाला हूं, आपको कैसे अमर कर सकता हूं। अगर वो पहले अमर करने की शक्ति तो होगी तो पहले मुझको मैं अमर करूंगा ना, फिर तुझे अमरता का वरदान दूंगा, लेकिन जब मैं खुद, मेरे एक जीवन काल है, मेरा भी जन्म है, मेरे भी एक मृत्यु का समय निश्चित है, तो मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूँ अमरता का। शंकर जी कैसा तत्व है जो नाश नहीं होता उनका, फिर भी वो जीवों को जीवन मुक्त करने की शक्ति उनके पास नहीं, वो केवल मुकुंद के पास है, श्री कृष्ण के पास मोक्ष देने की शक्ति, लेकिन मोक्ष देने वाले की भक्ति वो दे सकते हैं आपको, जिससे आपको बाद में मोक्ष मिल सकता है, ये शक्ति रखते हो। लेकिन गणेश जी से या देवी से या शंकर से आपको ये मांगना चाहिए, बाकी फालतू जी से मांगना नहीं चाहिए उनसे, आपको उनसे मांगना चाहिए कि आपको भक्ति दो, श्री कृष्ण के चरणों में रति दो, आश्रय दो, तुरंत देंगे। और ऐसे करोड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है, अपना अपना कुछ मांग रहे हो शिव जी से, लेकिन अगर एक लाइन वाले व्यक्ति ने ये मांगा कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, सबसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं जो वही मांग रहे हैं, क्योंकि जो देने के लिए उनकी इच्छा है जो लोग मांग नहीं रहे उसको, अगर कोई मांगता है तो बड़ी खुशी होती है उनकी कि मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा भी माल है जो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कोई मांग ही नहीं रहा है उसको। जब कोई मांगने वाला आता है योग्य व्यक्ति, उसको देखकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। हम कैसे 50 लोगों में कोई अगर हरे कृष्ण का भक्त मिला तो हम कैसे उसको जाके ये ढूंढ के जाके गले मिलते, अरे तू भी शादी में काम आ गया, मतलब मुझे भी निमंत्रण था, मैं भी आ गया, तो आप उसी के बाद चिपके रहोगे। बाकी शादी में नाच गाना चल रहा है, कुछ खराब पी रहा है, कोई मटन खा रहा है, कोई उधर आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सारे मेले के अंदर आप वो देखते हो कि अरे एक व्यक्ति है जो मेरे जैसा है, उसको मैं मिल सकता हूँ, ढूंढ के निकाल के गले लगाएंगे उसको। सब सऊदी अरब में जब गए थे तो भी कोई भक्त है नहीं उधर, जब बस स्टॉप में एक मल गया मिल गया भक्त तो उसको ऐसे गले लगाया, बारे बाप रे। जब कोई होता नहीं तो आपको कितनी भक्त की कीमत मालूम हो जाती है कि भक्त लोग कितने कीमती है। वैसे शिव जी के इतने करोड़ों की लाइन के अंदर कोई एक मिला उनको वैष्णव जो कुछ नहीं मांगता उनसे, बोलता है कि मुझे भक्ति दो। तो संक्षेप में ऐसे ही भक्त वृंदावन में एक थे जो शिव जी के निरपेक्ष भक्त थे, जो बहुत विरला होते, शिव जी के कोई भक्त निरपेक्ष नहीं होते, उन्हें अपेक्षा होती है। तो ऐसे भक्त को शिव जी ने दर्शन दिया, बोले तुम क्या चाहते हो, मतलब मैं क्या चाहते हो, नहीं मैं जानता हूँ कुछ आते नहीं हो, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, मांगो आप, मैं इतना प्रसन्न हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी आपको कुछ मन में इच्छा रख के भजन नहीं किया आपका, मैं तो आपका निरपेक्ष भक्त हूँ, आप मुझे कुछ मत दो, खाली आपका उपासना करते रहने दो, बस इतना ही बताया। तो शिव जी ने नहीं नहीं दर्शन दिया आपको, सपने में चल रहे बात है सपने में। तो शिव जी बोला कि नहीं नहीं मुझे देना है, मैं हमारा दर्शन खा ले जाता नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत सोचा कि क्या मांगे अभी, महाराज तो हमारे अभी तुले हुए देने के लिए। तो कहते हैं कि आपको जो सबसे पसंद है ना अच्छी तरह से, जो आप प्रिय है आपको, वो मुझे दे दो आप। तो शिव जी और जोर से हंसने लगे, अरे ऐसी बात तो कोई मांगा नहीं आज तक मुझसे किसी। बोले तुम्हारे कुएं में सुबह उठ के उतर जाओ तो तुम्हारे कुएं के अंदर तुम मेरी हृदय की प्रिय वस्तु जो है तुमको मिलेगी। तो बीच रात में उड़ गया, वो स्नान करके शुद्ध हो गया, अपने कुएं में उतर गया, सीढ़ी से होता ना तो कुएं में भी सीढ़ियां होती है और एक टनल में घुसता है वो राइट साइड में, तो उसके एंड में उसको राधा वल्लभ जी की मूर्ति मिलती है। तो आज राधा वल्लभ जी की मूर्ति आप देखते हो राधा वल्लभ जी के मंदिर में, वही मूर्ति है जो शिव जी के प्राण प्रिय है, शिव जी का प्राण धन है वो, जो आत्मदेव ब्राह्मण ने मांगा था इसलिए शिव जी को, शिव जी ने उनको दे दिया उसको। फिर आत्मदेव ब्राह्मण को वो शिव जी कहते हैं कि उसको जब प्राप्त करोगे मेरी प्रिय वस्तु को तो उसका ही भजन करो आप। तो शिव जी का भक्त होते हुए भी, उस मन में शिव जी की भक्ति रखते हुए भी उसने राधा वल्लभ जी की भगवान की सेवा किया। और आगे का तो बहुत लंबी कहानी है उसकी। कहने का तात्पर्य क्या है, इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि शिव जी के प्रिय कौन है, शिव जी के हृदय में कौन है, किसको चाहते हैं, तो किसकी माला जपते रहते हो दिन भर, वो राम की माला जपते हैं और कृष्ण की भी भजन करते हैं, तो एक ही भगवान है। पार्वती को उन्होंने यही समझाया है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, शिव पुराण पार्वती को समझाते हो। अरे शिवजी महाराज हमारे इतने महान है, आपको पता है शिवजी महाराज ने अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दिया है, हम हमारे पत्नी को क्या गिफ्ट देते हैं, साड़ी देते हैं, अलंकार देते हैं, कोई और कोई फैंसी चीज बैग खरीद के देते हैं। शिव जी ने राधा कृपा कटाक्ष रचकर अपनी पत्नी को भेंट दिया, जो सब ब्रजवासी गाते हैं ना, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी। ये स्तोत्र जो है वो शिव जी ने अपने पत्नी को खुद रचकर एक भेंट के रूप में दिया है। इतनी महान गिफ्ट अपनी पत्नी को आज तक किसी ने दिया, खुद रच कर दिया, इतना सुंदर स्तोत्र है राधा कृपा कटाक्ष, ये बहुत लोगों को पता नहीं। और ये दोनों देवताओं को, पति पत्नियों को भगवान ने प्रेम से वृंदावन धाम में आश्रय दिया है। ऐसी कितनी बातें और कितनी कथाएं हैं शिव जी जो उनके ड्यूटी के परे हैं, तो भगवान के विषय में, भगवान के संबंध में उनकी लीलाएं हैं। तो आज के शिवरात्रि में आप सबको हम विनती करते हैं, आप शिव जी का ध्यान कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, तो जरूर आपको श्री कृष्ण भक्ति देंगे, श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रय देंगे। जय वो शंकर भगवान की
जय।
धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।